अच्छा आपने याद दिलाया, मतलब आप सुन रहे हैं इसका मतलब। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे और सबसे छोटे उम्र में, छह गोस्वामी से सबसे छोटे उम्र में, कनिष्ठ उम्र में थे और श्रीरंगम में रहा करते थे। उनके पिताजी जो है वो श्री रंगनाथ जी के पुरोहित थे, पीढ़ीजात। तो वेंकट भट्ट के घर पे चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में जब ही विश्वरूप को, अपने बड़े भैया को खोजने के लिए निकले दक्षिण भारत की यात्रा में, तो श्रीरंगम में आए उस समय मध्य लीला के अंतर्गत। और उस समय जब पहुंचे श्रीरंगम में तो चतुर्मास से आरंभ हो चुका था और चार महीने सन्यासी कहीं घूमते नहीं है, एक जगह अपना जगह पकड़ के वही रहते हैं, वही भजन करते हैं। किसी भी संप्रदाय में आप जाएंगे ना, सारे गुरु जो है, मेन गुरु जो है, चतुर्मास से एक ही जगह करते हैं, अपना तय करते हैं कि इस साल चतुर्मास से यहाँ करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, वेंकट भट्टी ने उनको निवेदन दिया कि आप आए हैं तो चतुर्मास से हमारे यहाँ पर कीजिए और हमारे यहाँ पर रहिए। तो उनको एक अच्छा घर दिया रहने के लिए। तो उस घर में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु दिन भर श्री रंगनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में बहुत धुआंधार कीर्तन करते थे नगरवासियों के साथ, दिन भर, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। और उसके बाद में अपने कमरे में आते थे, थोड़ा विश्राम लेकर फिर रात भर वेंकट भट्ट, उनके पुत्र गोपाल भट्ट और वेंकट भट्ट के भाई प्रबोधानंद सरस्वती, तीन हो गए ना, और महाप्रभु, चार, ये चार व्यक्ति रात भर कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे, फुल नाइट। तब गोपाल की उम्र बहुत छोटी सी थी, 10-11 साल की थी, और गोपाल इतना बालक होते हुए भी दिन भर कीर्तन में नाचते थे और रात भर जगते थे, पता नहीं कब सोते थे, इतना भाव था उस समय महाप्रभु के होने से। चार महीने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संग में गोपाल रहे और इतने प्रेरित हुए कि जब चतुर्मास के बाद में जाने लगे चैतन्य महाप्रभु तो उनके पीछे पीछे छोड़ के जाने लगे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका, उनको कहा कि मेरी आपको आज्ञा है कि आपको अभी माता पिता की सेवा करनी है, जब माता पिता गुजर जाएंगे तब तुम वृंदावन चले जाना यहाँ से और तब मैं आपको वहाँ मिलूँगा। तो इतना छोटा बालक फिर भी इतना सद्गुणी था, महाप्रभु का आदेश सुन के ही कोई जिद नहीं की, कोई हट नहीं किया, सीधे लौट के आए और बालक ही था वैसे, तो अपने माता पिता की बड़े वृद्ध अवस्था तक सेवा की। जब एक एक करके दोनों के प्राण छूट गए तो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार वो वृंदावन चले गए। लेकिन ट्रिकी वस्तु ये थी कि महाप्रभु जी ने उनको वृंदावन जाने को बोला था तो उन्होंने वर्बैटिम, वर्ड टू वर्ड आज्ञा का पालन किया, लेकिन महाप्रभु जी उस समय जगन्नाथपुरी में थे, ये भी उनको पता था, लेकिन आज्ञा वृंदावन की थी इसलिए जगन्नाथपुरी नहीं गए, वृंदावन गए, वहां रहने लगे, तो विरह में चढ़पने लगे। तो खबर ये भक्तों के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु को पता चली कि मेरा भक्त गोपाल वहां तड़प रहा है मेरे बिना, तो अपना वस्त्र और अपना बैठने का आसन उनको भेज दिया उनके लिए, महाप्रसादी, जिसके मिलने से थोड़ा सा विरह शांत हो गया, फिर भी विरह कुछ कम नहीं हुआ। तो एक दिन रात को महाप्रभु स्वप्न में आए गोपाल भट्ट जी के और कहा कि तुम पशुपतिनाथ चले जाओ नेपाल, और वहाँ काली गंडकी नदी है उसमें चले जाओ, वहाँ पर मेरे आपको दर्शन होंगे जिसके लिए आप तड़प रहे हो। आप में से कितने लोग नेपाल गए हैं, काली गंडकी गए क्या? एक तो है काठमांडू जहाँ पर पशुपतिनाथ रहते हैं, हमारा इस्कॉन का मंदिर है, दक्षेश्वर महादेव है और बूढ़ी नीलकंठ है, बहुत सारा चीज़। उसके आगे 6 घंटे का रास्ता का जर्नी है पहाड़ों में, उधर आता है पोखरा, और पोखरा के आगे आप और आगे पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ों में काली गंडकी नदी आती है, उसमें गर्म पानी का स्रोत भी है, और उस काली गंडकी में पहाड़ से जो पत्थर गिरते हैं ना पानी में, तो पानी में विश्वकर्मा उधर वज्र कीट बने हुए हैं, एक कीटक के रूप में जन्म लेकर वहाँ रहते हैं वो पानी के अंदर, और वो पहाड़ से गिरे हुए पत्थर को अंदर से उसको डिजाइन बनाते हैं, शालिग्राम शिला का रूपांतर करते हैं उसका। तो उस नदी के किनारे अंदर जमीन के नीचे अनंत प्रकार की, अनंत आकारों की गोल मटोल शालिग्राम शिला मिलती है, वहाँ पर जाओ आपका दर्शन होगा। तो ये बेचारे यहाँ से चल के गए, पूरे पोखरा आगे पार करते हुए काली गंडकी के पास गए, और जब काली गंडकी में उतरे तो उनके कमंडल में 12 शिलाएं प्रवेश कर गई। ये तो आश्चर्य था ना, क्योंकि शिलाएं तो नीचे रहती है, वो पानी के ऊपर सरफेस पे क्यों आएगी तैरते हुए। तो उन्होंने क्या वापस डाल दिया उसको, दोबारा पानी भरा कमंडल का तो वापस 12 शिला अंदर आ गई, दोबारा डाल दिया तो तीसरी बार भी 12 शिलाएं अंदर आ गई। कुछ कहते हैं कि एक दो आई पहले फिर फेंक दिया, फिर दो दूसरी आई फेंक दिया, और थर्ड टाइम 12 शिला प्रवेश कर गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे सरफेस में शिला कैसे आ रही है। तीसरी बार जब आई तो आकाशवाणी हुई ध्वनि रूप में, मैंने कहा था ना कि मैं आपको मिलूंगा, ये शिला मैं ही हूं, ये शिला के रूप में मैं आपको मिल रहा हूं, ये मेरे से अभिन्न है, इसको वृंदावन लेके जाओ और इनकी सेवा करो और मैं आपको उनके द्वारा संग दूंगा अपना। तो वो शिला लेकर वृंदावन वापस लौट के आए और सब शिलाओं का पूजन शुरू किया, यमुना जल तुलसी और चंदन के साथ। और एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी के रात को दामोदर की शिला, दामोदर नाम की शिला से राधा रमन जी प्रकट हो गए, क्योंकि एक व्यापारी आया था, उन्होंने सभी गोस्वामियों को उनके विग्रह के लिए पोशाक अलंकार मुकुट मुरली सब दिया था, वो इनको भी दिया था। तो ये कहते हमारे तो कड़ी में पकौड़ी कैसी होती है वैसे हमारे ठाकुर जी हैं, क्योंकि चंदन में लगाएंगे ना, पूरा चंदन लगा देंगे तो वो गोल मटोल जो शिला है ना वो लिखती है कड़ी पकौड़ी। हाँ, तो इनको कहाँ पर आँख है उनकी, कहाँ पर मुंह है, कहाँ पर पैर है, कहाँ पर हाथ है, कैसे वस्त्र पहनाएंगे उनको, पता ही नहीं कहाँ से खाते हैं कहाँ से सोते हैं। फिर भी वो व्यापारी बोला नहीं नहीं सबको लाया आपको भी, आप देखो मेरी भेंट को अस्वीकार मत करो। जब से वो भेंट आई तब से इनके मन में विचार आया कि काश मेरे ठाकुर जी के भी हाथ पैर होते। तो नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव हुआ, उसमें उन्होंने खुद पढ़ा भागवत से कि खंभा तोड़कर भगवान बाहर आए प्रहलाद जी के एक इशारे पर, तो मेरे शिला में से क्यों नहीं आ सकते। तो रात को सोए तो कल अगले दिन सुबह रात में ही एक बड़ी शिला में से उसके आगे से, शिला पीछे रह गए उसके आगे से प्रकट हो गए। तो भाग के उन्होंने रूप गोस्वामी सब गोस्वामी को बुलाया। तो रूप गोस्वामी तो उसमें प्रधान थे ना, लीडर थे, उन्होंने ठीक से देखा उनको मूर्ति को और कहा कि इनके चरण कमल जो है वो मदन मोहन जी की तरह है, इनका वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ की तरह है, उनका मुख कमल जो है वो गोविंद जी की तरह है, तीनों ठाकुर के दर्शन वृंदावन के इस मंदिर में इस मूर्ति में हो रहे हैं। उन्होंने नामकरण भी किया उनका राधा रमन भगवान। और एक पेड़ के नीचे उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 12 शिला का पूजन किया करते थे। वो अभी भी उन मंदिर के बाहर एक पेड़ है, उधर सिंहासन बना हुआ है, वो उनका प्राकट्य स्थल ही है। उसके बाद में उनका मंदिर बनाया गया और उनको वहाँ पर सेवा किया गया। केवल 12 उंगली मात्र है वो साइज के, बड़े अद्भुत ठाकुर जी है वो, बड़े अद्भुत ठाकुर हैं, सबसे सुंदर हैं, मन लुभावने, इतने सुंदर उनके अंग बने हुए हैं, ऐसा है। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो, हरे कृष्णा।